आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम दिव्यांगा द्विवेदी एंड वी वर डूइंग सेकंड चैप्टर ऑफ हिस्ट्री, जिसमें आज हमें स्टार्ट करना है फ्रॉम पेज नंबर 14 एंड फ्रॉम द सोर्स टू। सो लेट्स स्टार्ट। द नवाब कंप्लेन्स। इन 1733 द नवाब ऑफ बंगाल सेड दिस अबाउट द इंग्लिश ट्रेडर्स। When they first came into the country, they petitioned the then government in a humble manner for liberty to purchase a spot of ground to build a factory house upon, which was no sooner granted, but they built a strong fort, surrounded it with a ditch which was communication with the river and mounted a great number of guns upon the walls. They have enticed several merchants and others to go and take protection under them, and they collect a revenue which amounts to rupees 1 lakh. They rob and plunder and carry great number of the king's subjects of both sexes into slavery into their own country. तो जो नवाब थे उस टाइम पर 1733 के टाइम पर, वो कंप्लेन कर रहे थे बंगाल के नवाब। उन्होंने ये बोला कि जब कंपनी पहले शुरू में आई थी तो उन्होंने एक पिटिशन साइन करवाया था गवर्नमेंट से, और उन्होंने एक हम्बल मैनर में पिटिशन साइन करवाया था गवर्नमेंट से, एक लैंड मांगी थी ताकि वो वहाँ पर अपनी फैक्ट्री बिल्ड कर सके। लेकिन जब उनको लैंड मिल गया, उसके बाद उनको जिस तरीके से उनका एस्टैब्लिशमेंट जो कर रहे थे वो लोग फोर्ट्स एंड ऑल का, वो करने के लिए जब मना कर दिया गया, देन व्हाट ही डिड, उन लोगों ने क्या किया कि फोर्ट्स को बना लिया और वहाँ पर अपने जो सैनिक हैं उनको तैनात कर दिया विद ऑल गन्स एंड ऑल। और उसके बाद उन लोगों ने जो हमारे ट्रेडर्स थे, हमारे जो छोटे फार्मर्स वगैरह थे, उनसे बोला कि तुम हमारे यहाँ आ जाओ काम करने के लिए, यू विल बी सेफ हेयर, हम आपको रेवेन्यू देंगे, सब कुछ देंगे। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, उन्होंने कोई ड्यूटीज़ भी नहीं पे करी एंड बकायदा वो 1 लाख रुपए लेकर चले गए बंगाल से। उसके बाद उन्होंने रॉबरी करी, बहुत सारे जो भारी मात्रा में लोग हैं उनको अपनी कंट्री में ले गए, चाहे वो मैन हो चाहे वेमेन, उनसे स्लेवरी करवाने के लिए। तो ये कंप्लेंट्स नवाब दे रहे हैं। Now come to the topic below, company officials become nawabs. What did it mean to be nawabs? It meant of the course that the company acquired more power and authority, but it also meant something else. Each company servant began to have visions of living like nawabs. तो नवाब का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कंपनी ने ज़्यादा से ज़्यादा, कंपनी के एस्पेक्ट में यहाँ बताया जा रहा है कि कंपनी के कोर्स में इसका मतलब ये होता है कि उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा पावर एक्वायर कर ली, उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा अथॉरिटी ले ली थी अपने पास। और इसका मतलब और भी कुछ होता है कि हर एक कंपनी का जो सर्वेंट है वो अपने आप को नवाब की तरह सोचने लग गया था, नवाब समझने लग गया था। कम टू नेक्स्ट पेज। आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी द एक्चुअल नवाब्स ऑफ बंगाल वर फोर्स टू गिव लैंड एंड वास्ट सम्स ऑफ मनी एज पर्सनल गिफ्ट्स टू कंपनी ऑफिशियल्स। तो जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ था तो जो एक्चुअल नवाब थे उनको फोर्स किया गया कि आप अपनी लैंड को छोड़ दो, आप अपनी लैंड दे दो हमें, और बहुत ज़्यादा अमाउंट में उनको मनी देना पड़ता था, पर्सनल गिफ्ट देने पड़ते थे उन्हें नवाब्स को, कंपनी ऑफिशियल्स को, मतलब नवाब्स कंपनी ऑफिशियल्स को पैसा, ज़मीन और गिफ्ट देते थे, और वो भी अपने मन से नहीं, उनको फोर्स किया जाता था। रॉबर्ट क्लाइव हिमसेल्फ अमास्ड अ फॉर्चून इन इंडिया। He had come to Madras, now Chennai, from England in 1743 at age of 18. When in 1767 he left India, his Indian fortune was worth 4,1102 pound sterling. ये जो साइन सामने बना हुआ है वो वहाँ की करेंसी का, यानी कि पाउंड स्टर्लिंग का साइन है। तो जब रॉबर्ट क्लाइव जो था वो जब इंडिया में आया था 1743 में, इंग्लैंड से आया था वो मद्रास, जिसे आज हम चेन्नई बोलते हैं, तो जब वो वहाँ से आया था तो उस टाइम पर उसकी एज 18 थी, और जब वो 1767 में इंडिया से गया तो उसका इंडियन फॉर्चून जो था, मतलब जो उसकी वर्थ थी उस टाइम पर, वो 4,1102 पाउंड स्टर्लिंग जितनी थी, मतलब इतना ज़्यादा उसने गेन कर लिया था। Interestingly, when he was appointed Governor General of Bengal in 1764, he was asked to remove corruption in company administration, but he was himself cross-examined in 1772 by the British Parliament and was suspicious of his vast wealth. Although he was acquitted, he committed suicide in 1774. तो इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब उसको गवर्नर जनरल अपॉइंट किया गया था, बंगाल का गवर्नर अपॉइंट किया था 1764 में, तो उससे बोला गया था कि कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन में जो करप्शन हो रहा है आपको वो हटाना है, बट वो तो खुद ही एक करप्ट ऑफिसर था क्योंकि उसके ऊपर केस चल रहा था 1772 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के थ्रू, और उस पर शक था कि उसके पास बहुत ज़्यादा वेल्थ है जो कि उसकी इनकम के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। उसके बाद उसको एक्विट किया गया, यानी कि वो गुनहगार साबित किया गया, और उसके बाद उसने 1774 में सुसाइड कमिट कर लिया। However, not all company officials succeeded in making money like Clive. Many died an early death in India due to disease and war, and it would not be right to regard all of them as corrupt and dishonest. हालांकि सारे जो कंपनी ऑफिशियल्स थे वो लोग इतना ज़्यादा पैसा नहीं बना पाए थे जितना ज़्यादा क्लाइव ने बना लिया था, जितना अर्न कर लिया था। काफ़ी लोग अर्ली डेथ में मर गए थे क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा डिजीज़ वगैरह आए थे उस टाइम पर, एपिडेमिक्स आए थे, जैसे फॉर एग्जांपल अभी जैसे कोरोना वायरस एपिडेमिक, इट्स अ पैंडेमिक, तो उस टाइम पर भी ऐसे जो एपिडेमिक्स आए थे तो उससे कुछ लोग मर गए थे कंपनी ऑफिशियल्स, कुछ वॉर में मर गए थे। लेकिन ऐसा नहीं था, ये कहना उनके लिए सही नहीं होगा कि सबके सब करप्ट या डिसऑनेस्ट थे, तो कुछ अच्छे भी थे। मैनी ऑफ देम केम फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड्स एंड देयर अपर मोस्ट डिजायर वॉज टू अर्न इनफ इन इंडिया, रिटर्न टू ब्रिटेन एंड लीड अ कम्फर्टेबल लाइफ। तो ज़्यादातर उसमें जो लोग थे वो एक हम्बल बैकग्राउंड के थे, यानी कि मतलब बहुत लड़ाई झगड़ा ये सब करना नहीं, उनकी बस एक सबसे ज़्यादा बड़ी इच्छा ये थी कि अच्छे से अर्न करना इंडिया से और उसके बाद अपने ब्रिटेन में जाकर वापस से कंफर्टेबल लाइफ जीना। दोज हु मैनेज टू रिटर्न विथ वेल्थ लेड फ्लैशी लाइव्स एंड फ्लॉन्टेड देयर रिचेस। तो जो लोग बहुत ज़्यादा पैसे के साथ लौटे इंडिया से ब्रिटेन वापस, बहुत सारे पैसे के साथ लौटे, तो वो तो उनकी लाइफ तो बहुत ज़्यादा लग्जूरियस हो गई थी। दे वर कॉल्ड नवाब्स, एन एंग्लिसाइज्ड वर्जन ऑफ द इंडियन वर्ड नवाब। दे वर ऑफन सीन एज अपस्टार्ट्स एंड सोशल क्लाइमर्स इन ब्रिटिश सोसाइटी एंड वर रेडिक्यूल्ड और मेड फन ऑफ इन प्लेज एंड कार्टून्स। तो ये लोग जो थे, जो इतना ज़्यादा वेल्थ लेकर जाते थे और ब्रिटेन में जाकर सेटल हो जाते थे, तो उनको नवाब्स बोला जाता था, जो कि एक नया वर्जन है, जो वर्ड है इंडियन नवाब उसका। और उनको ना अपस्टार्ट बोला जाता था, सोशल क्लाइंबर्स बोला जाता था ब्रिटिश सोसाइटी में, और उनका मजाक उड़ाया जाता था प्लेज और कार्टून्स में। नाउ कम टू राइट हैंड साइड टॉप राइट कॉर्नर सोर्स 3। हाउ डिड क्लाइव सी हिमसेल्फ, क्लाइव अपने आप को किस तरीके से देखता था, वो क्या समझता था अपने बारे में, यहाँ वो बताया जा रहा है। एट हिज हेयरिंग इन फ्रंट ऑफ अ कमिटी इन पार्लियामेंट, क्लाइव डिक्लेयर्ड दैट ही हैड शोन एडमायरेबल रेस्ट्रेंट आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी। दिस इज वॉट ही सेड, कंसिडर द सिचुएशन इन विच द विक्ट्री एट प्लासी हैड प्लेस्ड मी। अ ग्रेट प्रिंस वॉज डिपेंडेंट ऑन माई प्रेशर प्लेजर, एन ऑप्यूलेंट सिटी ले एट माई मर्सी। Its richest bankers bid against each other for my smiles. I walked through walls which were thrown open to me alone, piled on either hand with gold and jewels. Mr. Chairman, at this moment I stand astonished at my moderation. वो ये बोल रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन कंसिडर करिए जहाँ पर विक्ट्री जो है वो मुझे मिल चुकी है, उसके बाद मेरे विल के हिसाब से, मेरे दया के कारण एक सिटी पल रही है, जितने भी रिचेस्ट बैंकर हैं वो मेरी एक स्माइल के लिए आपस में लड़ झगड़ रहे हैं क्योंकि उनको मुझसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। मैं जहाँ जहाँ पर भी जाता हूँ लोग अपने जो किंगडम्स होता है, सब कुछ होता है, मुझे दे देते हैं, और मेरे दोनों हाथों में ज्वेल्स एंड गोल्ड्स एंड ऑल है। तो वो ये दर्शा रहा है अपने आप को कि मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ और लोग मेरी बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं। ऑल दो ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ डर की वजह से, और वो लोगों को जिस तरीके से फोर्स करता था इस वजह से लोगों को उसे रिस्पेक्ट देनी पड़ती थी। नाउ कम टू द टॉपिक कंपनी रूल एक्सपैंड्स। इफ वी एनालाइज द प्रोसेस ऑफ एनेक्सेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम 1757 टू 1857, सर्टेन की एस्पेक्ट्स इमर्ज। The company rarely launched a direct military attack on an unknown territory. Instead, it used a variety of political, economic, and diplomatic methods to extend its influence before annexing an Indian kingdom. अगर हम ये analyze करें जो इनका annexation का process था, यानी कि जो expand ये लोग हो रहे थे ब्रिटिशर्स इंडिया में, अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर, तो अगर ये 1757 से 1857 का हम देखें तो कुछ ऐसे की एस्पेक्ट्स से जो इमर्ज हुए, उन्होंने कभी भी एक प्रॉपर मिलिट्री, डायरेक्ट मिलिट्री एक्ट अटैक लॉन्च नहीं किया था किसी भी अननोन टेरिटरी के ऊपर। उसके बजाय उन लोगों ने राजनीति के थ्रू, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक मेथड से उन लोगों ने वहाँ के राजाओं को इन्फ्लुएंस किया और धीरे धीरे करके वो किंगडम पर अपना हक जमाना शुरू कर दिया। कभी भी इन्हें डायरेक्ट अटैक नहीं किया क्योंकि उनको ये डर था कि अगर हम डायरेक्ट अटैक करेंगे तो इट माइट पॉसिबल कि हम हार जाएं। लेकिन धीरे धीरे करके ये लोग क्या करते थे, राजा की कमजोरी पता करना, सब कुछ करना और फिर उसके बाद उस पर वार करते थे ताकि ये लोग जीत जाएं। आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर 1764, द कंपनी अपॉइंटेड रेसिडेंट्स इन इंडियन स्टेट्स। दे वर पॉलिटिकल और कमर्शियल एजेंट्स एंड देयर जॉब वॉज टू सर्व एंड फर्दर द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। Through the residents, the company officials began interfering in the internal affairs of Indian states. तो जब battle of Buxar हुआ 1764 में, तो company ने residents जो थे वो appoint किए अलग अलग Indian state पर, और वो political या commercial agents थे और उनका काम था company के जो interest है उसको serve करना, company के लिए काम करना। तो ये लोग क्या करते थे, अपने इन residents के through जो official matter होता था Indian states का, जो official internal affairs होते थे राजा वगैरह के, उसमें दखल अंदाजी करते थे ये लोग। दे ट्राइड टू डिसाइड हु वॉज टू बी द सक्सेसर टू द थ्रोन एंड हु वॉज टू बी अपॉइंटेड इन एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट। तो वो लोग ये डिसाइड करना शुरू कर देते थे कि अब अगला राजा कौन बनेगा और किसको एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट दी जानी चाहिए। तो ये मतलब राजा के जो डिसीजन होते थे उसमें भी ये लोग टांग अड़ाते थे। समटाइम्स द कंपनी फोर्स द स्टेट्स इन टू अ सब्सिडरी अलायंस। According to the terms of this alliance, Indian rulers were not allowed to have their independent armed forces. They were to be protected by the company but had to pay for the subsidiary forces that the company was supposed to maintain for the purpose of this protection. तो कई बार क्या होता था, जो कंपनी थी वो फोर्स करती थी जो इंडियन रूलर्स होते थे उनको फोर्स करती थी कि आप लोग एक सब्सिडरी अलायंस फॉर्म कर लो। और इस अलायंस के तहत क्या होता था कि जो इंडियन रूलर्स होते थे उनको खुद की जो एक आर्मी होती है, जो उनकी सेना होती है, उसे रखने का अनुमति नहीं थी, परमिशन नहीं थी, बल्कि उनसे ये बोला जाता था कि हम आपको आर्मी प्रोवाइड करेंगे लेकिन आपको उसके लिए हमें फोर्स, उस फोर्स के लिए, सब्सिडरी फोर्स के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, सब कुछ देंगे, लेकिन उस फोर्स के लिए आप हमें पैसा दोगे ताकि हम उस फोर्स को अच्छे से मेंटेन कर सकें। इफ द इंडियन रूलर्स फेल टू मेक द पेमेंट देन पार्ट ऑफ देयर टेरिटरी वॉज टेकन अवे एज पेनल्टी। तो जब अगर इंडियन रूलर्स अपना ये जो पेमेंट मांगते थे ये लोग कि हम आपको सब्सिडरी फोर्सेस प्रोवाइड करेंगे लेकिन पेमेंट आपको देनी पड़ेगी, अगर इंडियन रूलर्स वो पेमेंट नहीं दे पाते थे तो उनके टेरिटरी का, जो भी उनका रीजन होता था, जो उनका राज्य होता था, उसका एक पार्ट ये लोग ले लेते थे पेनल्टी के रूप में। फॉर एग्जाम्पल, वेन रिचर्ड वॉल्सली वॉज गवर्नर जनरल 1798 to 1805, the Nawab of Awadh was forced to give over half of his territory to the company in 1801 as he failed to pay for the subsidiary forces. तो यहाँ पर एग्जाम्पल हमें दिखाया जा रहा है जब रिटर वेल्सली गवर्नर जनरल बने थे, वो रहे थे गवर्नर जनरल फ्रॉम द पीरियड ऑफ 1798 से 1805 तक। तो जो नवाब थे अवध के, उनको फोर्स किया गया था कि आप अपना हाफ ऑफ द टेरिटरी दे दो कंपनी को 1801 में, क्योंकि उन्होंने ये सब्सिडरी फोर्सेस का जो पेमेंट है वो पे नहीं किया था, तो इसलिए उनको फोर्स किया जा रहा था कि आप अपना आधा राज्य हमें दे दो। हैदराबाद वॉज ऑल्सो फोर्स टू सीड टेरिटरीज ऑन सिमिलर ग्राउंड। तो हैदराबाद को भी फोर्स किया जा रहा था कि वो भी अपनी टेरिटरीज दे दें कंपनी को। नाउ कम टू प्रीवियस पेज, कम ऑन द एक्टिविटी बॉक्स। इमेजिन दैट यू आर अ यंग कंपनी ऑफिशियल हु हैज बीन इन इंडिया फॉर अ फ्यू मंथ्स। राइट अ लेटर होम टू योर मदर टेलिंग हर अबाउट योर लग्जूरियस लाइफ एंड कॉन्ट्रास्टिंग इट विथ योर अर्लियर लाइफ इन ब्रिटेन। तो आपको इमेजिन करना है कि एक कंपनी ऑफिशियल हो आप, आपने इंडिया में कुछ महीने काम किया और अपनी मम्मी को एक लेटर लिखना है कि आप कितनी ज़्यादा लग्जूरियस लाइफ स्पेंड कर रहे हो वहाँ पर और आपकी लाइफ ब्रिटेन में पहले कैसी थी वो आपको बताना है। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज अगेन, कम ऑन फिगर 7 ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर। नवाब शुजादुद्दौला ऑफ अवध विथ हिज सन्स एंड द ब्रिटिश रेसिडेंट पेंटेड बाय चिली कैटल ऑयल 1772। तो वहाँ के नवाब थे अवध के अपने बेटों के साथ खड़े और वहाँ पे ब्रिटिश ऑफिशियल्स भी खड़े हुए हैं। The treaties that followed the Battle of Buxar forced Nawab Sirajuddaulah to give up much of his authority. Here, however, he poses in regal splendor, towering over the resident. तो जब बैटल ऑफ बक्सर हुआ था तो इनको फोर्स कर दिया गया था कि आप अपनी जो अथॉरिटी है, जो पावर है, आपका जो राज्य है वो पूरा हमें दे दो. हालांकि यहाँ पर जो पोजेस दिखाए गए वो ऐसा दिखाया गया है कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं और ये कंपनी ऑफिशियल के ऊपर आते हैं, बट ऐसा एक्चुअल में नहीं था. नाउ कम टू सोर्स 4. व्हाट पावर डिड द रेसिडेंट हैव? दिस इज व्हाट जेम्स मिल, द फेमस इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर फ्रॉम स्कॉटलैंड, wrote about the residents appointed by the company. तो ये जो जेम्स मिल थे और जो फेमस इकोनॉमिस्ट थे, जो कि एक पॉलिटिकल फिलोसोफर थे स्कॉटलैंड से, जिनके बारे में हमने पहले भी एक सोर्स में पढ़ा है, उन्होंने वहाँ के जो रेसिडेंट्स हैं जो कि कंपनी द्वारा अपॉइंटेड किए गए हैं उनके बारे में कुछ लिखा था. सो लेट अस रीड इट आउट. वी प्लेस अ रेसिडेंट हु रियली इज किंग ऑफ द कंट्री, वॉट एवर इंजंक्शंस ऑफ नॉन इंटरफेरेंस ही मे एक्ट अंडर, एज लॉन्ग एज द प्रिंस एक्ट्स इन परफेक्ट सबसर्वियंस and does what is agreeable to the residents, that is to the British government. Things go on quietly, they are managed without the resident appearing much in administration of affairs, but when anything of a different nature happens, the movement of prince takes a course which British government think wrong, then comes clashing and disturbance. यहाँ पर एक रेसिडेंट को किंग माना जाता था, मतलब जो रेसिडेंट होता था वो अपने आप को किंग समझ लेता था, जो भी इंस्ट्रक्शंस देते थे उसमें उसका जो नॉन इंटरफेरेंस है वो एक्ट करता था, यानी कि वो जो उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट बोल दे उसको वो चीज़ करनी पड़ती थी. तो जैसे जैसे प्रिंस जो है वो एक्ट करता था सब सर्वियंस, यानी कि साइड में मतलब दिया इसका सबमिसिवनेस के तौर पर, और जो रेसिडेंट्स हैं वो एग्रीएबल तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट जो बोल रही है वो सारी चीज़ें चुपचाप करते रहे, तो वो लोग विदाउट एनी अपीयरिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में रेसिडेंट को रखते थे. मतलब जो रेसिडेंट वो लोग ऑप्ट करते थे तो उसमें क्या करते थे ये लोग कि उनको तब तक बहुत अच्छे से रखा जाता था जब तक वो किसी तरीके से प्रोटेस्ट ना कर रहे हों और जब तक वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कुछ ना बोल रहे हों. बट ऐसा होता नहीं था. कुछ भी अगर डिफरेंट हो जाता था और ऐसा टाइम आ जाता था कि प्रिंस जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कुछ सोचने लग जाए उनके बारे में, तो फिर क्लैशिंग और डिस्टर्बेंस का टाइम आता था. Now come to next topic, Tipu Sultan, the Tiger of Mysore. The company resorted to direct military confrontation when it saw a threat to its political or economic interest. This can be illustrated with the case of the southern Indian state of Mysore. कंपनी ने क्या किया कि अपनी जो मिलिट्री कन्फ्रंट्रेशन थी, जब उसने देख लिया कि जो उसके पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो हैं वो मैसूर में हैं, तो उन्होंने वहाँ पर अटैक कर दिया. मैसूर हैड ग्रोन इन स्ट्रेंथ अंडर द लीडरशिप ऑफ पावरफुल रूलर्स लाइक हैदर अली, रूल्ड फ्रॉम 1761 टू 1782, एंड हिज फेमस सन टीपू सुल्तान रूल्ड फ्रॉम 1782 टू 1799. Mysore controlled the profitable trade of the Malabar coast where the company purchased pepper and cardamom. तो मैसूर जो था उसमें बहुत ज़्यादा पावर थी, वहाँ पर स्ट्रेंथ एंड लीडरशिप थी, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे पावरफुल रूलर्स रहे हैं जैसे कि हैदर अली, जिन्होंने 1961 से लेकर 1782 तक वहाँ पर रूल किया था, एंड उनका जो बेटा था टीपू सुल्तान, जिसके बारे में आप लोगों ने काफ़ी नाम सुना होगा, उन्होंने 1782 से लेकर 1799 तक रूल किया था. तो मैसूर का जो कंट्रोल है वो वहाँ के प्रॉफिटेबल ट्रेड पर था जो कि मालाबार कोस्ट के पास होता था, जहाँ से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अपने लिए पेपर और कार्डमम खरीदती थी. इन 1785 टीपू सुल्तान स्टॉप्ड द एक्सपोर्ट ऑफ सैंडलवुड, पेपर एंड कार्डमम थ्रू पोर्ट्स ऑफ हिज किंगडम एंड दिस अलाउड लोकल मर्चेंट्स फ्रॉम ट्रेडिंग विद कंपनी. 1785 में टीपू सुल्तान ने क्या किया, एक्सपोर्ट बंद कर दिया था चंदन की लकड़ियों का, पेपर यानी कि काली मिर्च और कार्डमम यानी कि इलायची का. उसने ट्रेड बंद कर दिया था. उसने ये बोला कि कोई भी मेरे किंगडम से ये सारी चीज़ें एक्सपोर्ट नहीं करेगा यूरोप में, और जो लोकल मर्चेंट्स थे वहाँ पर उनको कंपनी के साथ ट्रेड करने के लिए उसने मना कर दिया था. ही ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड अ क्लोज रिलेशनशिप विद द फ्रेंच इन इंडिया एंड मॉडर्नाइज्ड हिज आर्मी विद देयर हेल्प. तो उसने क्या किया, एक काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप बना लिया था फ्रेंच के साथ, और उसने अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज करने में उनकी हेल्प ली थी. Come to previous page, पेज नंबर 16, सी फिगर 8 ऑफ टीपू सुल्तान. तो ये उनका एक पिक्चर यहाँ पर आपको दिखाया गया है. नाउ कम टू नेक्स्ट पेज, सी फिगर 9, कॉर्नवालिस रिसीव्ड द सन्स ऑफ टीपू सुल्तान एज हॉस्टेजेस, पेंटेड बाय डैनियल ओर्म, 1793. जो कॉर्नवालिस थे उन्होंने जो टीपू सुल्तान के बच्चे उनको हॉस्टेजेस के रूप में उनको कब्जा करके रख लिया था, और ये एक पेंटिंग बनाई गई है डैनियल ओर्मे ने 1793 में. द कंपनी फोर्सेज वर डिफीटेड बाय हैदर अली एंड टीपू सुल्तान इन सेवरल बैटल्स, बट इन 1792 अटैक्ड बाय द कंबाइंड फोर्सेज ऑफ द मराठास, द निज़ाम ऑफ हैदराबाद एंड द कंपनी, टीपू वॉज फोर्स टू साइन अ ट्रीटी विद द ब्रिटिश बाय विच टू ऑफ हिज सन्स वर टेकन अवे एज हॉस्टेजेस. ब्रिटिश पेंटर्स ऑलवेज लाइक पेंटिंग सीन्स दैट शोड द ट्रायम्फ ऑफ ब्रिटिश पावर. तो हुआ क्या था, कंपनी के फोर्सेज जो थी उनको कई बार हैदर अली ने और टीपू सुल्तान ने हराया था बहुत सारे बैटल्स में. जब कंपनी इनसे बैटल करती थी तो इन लोगों ने काफ़ी बार हराया था. लेकिन 1792 में क्या हुआ कि जो कंपनी है उसने मराठा और जो निज़ाम थे हैदराबाद के उनके साथ मिलकर टीपू सुल्तान के ऊपर अटैक किया था और टीपू सुल्तान हार गया था. तो उनको फोर्स किया गया एक ट्रीटी साइन करने के लिए, और उनके जो दोनों बेटे थे उनको ब्रिटिश ले गए अपना बंदी बनाकर. तो जो ब्रिटिश पेंटर्स थे उस टाइम के उनको ये सारी पेंटिंग करना बहुत अच्छा लगता था जिसमें ब्रिटिश पावर बहुत ज़्यादा शो हो रही हो. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोनों बच्चे जो हैं उनको हॉस्टेजेस के रूप में ले गए हैं. नाउ कम टू सेकेंड पैरा, द ब्रिटिश वर फ्यूरियस, दे सॉ हैदर एंड टीपू एज एम्बिशियस, एरोगेंट एंड डेंजरस रूलर्स हु हैड टू बी कंट्रोल्ड एंड क्रश्ड. जो ब्रिटिशर्स थे वो बहुत ज़्यादा फ्यूरियस थे, उनको हैदर और टीपू सुल्तान बहुत ज़्यादा एम्बिशियस लगते थे, बहुत ज़्यादा एरोगेंट लगते थे एंड डेंजरस भी लगते थे. तो वो चाहते थे कि वो ऐसे रूलर्स हैं जिनको कंट्रोल करना और क्रश कर देना ज़रूरी है. फोर वॉर्स वर फॉट विथ मैसोर, 1767-69, 1780-84, 1790-92 एंड 1799. तो फोर बैटल्स, फोर वॉर्स लड़े गए थे मैसूर के साथ ब्रिटिशर्स ने. ओनली इन द लास्ट, द बैटल ऑफ सेरिंगापट्टनम, डिड द कंपनी अल्टीमेटली विन अ विक्ट्री. तो जो लास्ट बैटल था 1799 का, जो कि बैटल ऑफ सेरिंगापट्टनम था, वहाँ पर कंपनी को जीत हासिल हो गई थी, दे गॉट द विक्ट्री. टीपू सुल्तान वॉज किल्ड डिफेंडिंग हिज कैपिटल सेरिंगापट्टनम. मैसूर वॉज प्लेस्ड अंडर द फॉर्मर रूलिंग डायनेस्टी ऑफ द वोडेयर्स एंड अ सब्सिडरी अलायंस वॉज इम्पोज ऑन द स्टेट. तो टीपू सुल्तान को मार दिया गया था जब वो अपना कैपिटल जो कि सेरिंगापट्टनम था उसको डिफेंड कर रहे थे, और मैसूर में एक ऐसा पपेट रूलर वहाँ पे इन लोगों ने बिठा दिया था, और वहाँ पर ये लोग सब्सिडरी अलायंस जो था स्टेट पर डाल रहे थे, जिसमें वो हमने लास्ट अभी पढ़ा था कि जिसमें सब्सिडरी अलायंस में ये लोग बोलते थे हम फोर्स अपनी प्रोवाइड करेंगे लेकिन आपको एक उसके लिए अमाउंट देना पड़ेगा. तो वो अलायंस था. नाउ सी फिगर 10, टीपूज टॉय टाइगर. दिस इज़ द पिक्चर ऑफ अ बिग मैकेनिकल टॉय दैट टीपू पजेस्ड. You can see a tiger mauling a European soldier. When its handle was turned, the toy tiger roared and the soldier shrieked. This toy tiger is now kept in the Victorian Albert Museum in London. The British took it away when Tipu Sultan died defending his capital, Seringapatam, on 4th May 1799. तो ये पिक्चर जो टीपू सुल्तान है उनका एक टॉय है उसकी पिक्चर है, जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि जो टाइगर है वो चढ़ा हुआ है एक ब्रिटिशर के ऊपर और उसे काट रहा है. तो ये जो है टॉय, इसको अब विक्टोरियन एल्बर्ट म्यूजियम जो है लंदन में वहाँ पर है अब ये, क्योंकि जब टीपू सुल्तान को मार दिया था ब्रिटिशर्स ने तो उन्होंने इसको अपने साथ लेकर चले गए थे. नाउ कम टू दिस बॉक्स ऑन द राइट हैंड साइड, द लेजेंड ऑफ टीपू. Kings are often surrounded by legend and their powers glorified through folklore. Here is a legend about Tipu Sultan who became the ruler of Mysore in 1782. Kings के पास ज़्यादातर बहुत सारे legendary लोग होते हैं, वो जिनके पास बहुत सारी power होती है और वो अपने जो भी बल का प्रदर्शन करते हैं उससे वो पता चलता है. तो Tipu Sultan के पास भी एक legend था जो कि ruler बना मैसूर का 1782 में. It is said that once he went hunting in the forest with a French friend, that he came face to face with a tiger. His gun did not work and his dagger fell to the ground. He battled with the tiger unarmed until he managed to reach down and pick up the dagger. Finally, he was able to kill the tiger in the battle. After this, he came to be known as the Tiger of Mysore. He had image of tiger on his flag. तो टीपू सुल्तान एक बार जंगल में गए थे अपने एक फ्रेंच दोस्त के साथ. वहाँ पर उनका सामना एक टाइगर से हो गया था. तो उनकी गन काम नहीं कर रही थी और उनका जो ड्रैगर था वो नीचे गिर गया था. तो उन्होंने बिना किसी हथियार के उस टाइगर से लड़ा, हाथापाई करी, तब तक जब तक वो नीचे पहुँच कर अपना ड्रैगर नहीं ले लेते झुक कर. उसके बाद फाइनली उन्होंने टाइगर को मार दिया था और इसी के बाद से इनको टाइगर ऑफ मैसूर बुलाया जाता था. उनका जो फ्लैग था उसमें भी एक टाइगर की इमेज थी. तो यही इंसिडेंट था जिसकी वजह से उनको टाइगर बुलाया जाता था. कम टू नेक्स्ट पेज, कम टू द टॉपिक वॉर विथ मराठास. फ्रॉम द लेट 18th सेंचुरी द कंपनीज ऑल्सो सॉट टू कर्व एंड इवेंचुअली डिस्ट्रॉय मराठा पावर. विद देयर डिफीट इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन 1761 द मराठास ड्रीम ऑफ रूलिंग फ्रॉम दिल्ली वॉज शैटर्ड. तो लेट 18th सेंचुरी के टाइम पर कंपनी चाहती थी कि वो पूरी तरीके से मराठा पावर जो है उसको ख़त्म कर दे. तो जब वो लोग हार गए थे, मराठास जब हार गए थे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में जो कि 1761 में हुआ था, तो उनका जो सपना था कि वो दिल्ली पे से रूल करेंगे तो वो पूरी तरीके से टूट चुका था. दे वर डिवाइडेड इंटू मैनी स्टेट्स अंडर डिफरेंट चीफ्स सरदार बिलोंगिंग टू डायनेस्टी सच एज सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ एंड भोंसले. तो वो लोग अलग अलग स्टेट में डिवाइड हो गए थे. उनके जो चीफ्स यानी कि सरदार थे उसके हिसाब से वो अलग अलग डायनेस्टी आ गई थी, जैसे कि सिंधिया डायनेस्टी आ गई थी, होलकर आ गई थी, गायकवाड़, भोंसले, ये सारी डायनेस्टी आ गई थी क्योंकि ये लोग टुकड़ों में बट गए थे. अब दीज चीफ्स वर हेल्ड टुगेदर इन कॉन्फेडरेसी अंडर अ पेशवा प्रिंसिपल मिनिस्टर हु बिकेम इट्स इफेक्टिव मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बेस्ड इन पुणे. तो ये जो चीफ्स थे वो पेशवा के अंडरगत आते थे जो कि प्रिंसिपल मिनिस्टर हुआ करते थे. एंड उसके बाद दे बिकेम द इफेक्टिव मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड इन पुणे. महाजी सिंधिया एंड नाना पंडिस वर टू फेमस मराठा सोल्जर्स एंड स्टेटमैन ऑफ लेट 18th सेंचुरी. तो ये दो लोग जो थे वो बहुत ही फेमस मराठा सोल्जर्स थे और स्टेटमेंट्स थे लेट 18th सेंचुरीज के टाइम पर. द मराठास वर सबड्यूड इन अ सीरीज ऑफ वॉर. इन द फर्स्ट वॉर दैट एंडेड इन 1782 विद द ट्रीटी ऑफ सालबाई देयर वॉज नो क्लियर विक्ट्री. द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर 1803-1805 वॉज फॉट ऑन डिफरेंट फ्रंट्स रिजल्टिंग इन द ब्रिटिश गेनिंग उड़ीसा एंड द टेरिटरीज नॉर्थ ऑफ यमुना रिवर इंक्लूडिंग आगरा एंड दिल्ली. मराठास की जो पावर है वो एक सीरीज ऑफ वॉर के साथ ख़त्म होती जा रही थी. जो पहला वॉर हुआ था 1782 में उसमें ट्रीटी ऑफ सालबाई साइन करनी पड़ी थी इनको. फिर सेकेंड जो एंग्लो मराठा वॉर हुआ था 1803 से 1805 के टाइम पर वो अलग अलग चीज़ों पे हुआ था. जो ब्रिटिश ने उड़ीसा गेन कर लिया था, जो नॉर्थ यमुना रिवर इंक्लूडिंग आगरा दिल्ली ये सब उसमें गेन कर लिया था. फाइनली द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर ऑफ 1817-1819 क्रश्ड मराठा पावर. फिर जो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुआ था उसमें मराठा पावर पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स के द्वारा ख़त्म कर दी गई थी. द पेशवा वॉज रिमूव्ड एंड सेंट अवे टू बिठूर नियर कानपुर विद अ पेंशन. द कंपनी नाउ हैड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द टेरिटरीज साउथ ऑफ विंध्यास. तो जो पेशवा था उसको हटा दिया गया, उसको बिठूर भेज दिया गया जो कि कानपुर के पास एक जगह है, और उसको वहाँ पर पेंशन दी जाती थी. और अब कंपनी का पूरा पूरा कंट्रोल था पूरी टेरिटरी पर जो कि साउथ ऑफ विंध्यास में थी. नाउ कम टू दिस एक्टिविटी ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर. इमेजिन दैट यू हैव कम अक्रॉस टू ओल्ड न्यूज़पेपर्स रिपोर्टिंग ऑन द बैटल ऑफ सेरिंगापटम एंड द डेथ ऑफ टीपू सुल्तान. वन इज़ अ ब्रिटिश पेपर एंड अदर इज फ्रॉम मैसूर. राइट द हेडिंग हेडलाइन फॉर ईच ऑफ द टू न्यूज़पेपर्स. तो ये आपका काम है, दोनों अलग अलग तरीके से लिखेंगे. सो डू इट. एंड टूडेज क्लास वील क्लोज हेयर ओनली. इसके बाद वील स्टार्ट विद द सेकेंड टॉपिक दैट इज द क्लेम टू पैरामाउंटेसी. सो टिल देन प्लीज कीप रिवाइजिंग.
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद.